तम इमं अहम अजम शरीर भाजाम हृदय हृदय धिष्ठितमात्म कल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकर्धार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूत भेदमोह। मैं श्री कृष्ण को पूरा पूरा जान रहा हूं, मुझे ज्ञान हो गया है कि कौन है। समधिगत अधिगत मैं जान गया हूं। यद्यपि श्री कृष्ण एक हैं, लेकिन फिर भी सब जगह हैं। एक ही कृष्ण सब जगह। हृदय हृदय धिष्ठितम, जो हृदय हृदय प्रत्येक जीव के हृदय में धिष्ठितम उपविष्ट है, रहते हैं, सब सब जगह उपविष्ट है। वे प्रकृति के अंतर्जामी है, ब्रह्मांड के अंतर्जामी है, प्रत्येक जीवों में अंतर्जामी रूप से रहते हैं। तम यहां अजम शरीर भाजम, शरीरधारियों के हृदय हृदय में जो हैं, और शरीरधारी कैसे हैं, तो आत्मकल्पिता में किसी के शरीर का निर्माण सृष्टि स्वयं कृष्ण ने किया है, और सृष्टि करके सबके शरीर में रहते हैं, सब जगह हैं, लेकिन हैं एक। मैं इस बात को समझ गया हूं कि एक ही कृष्ण सब जगह है। द्वारका में, मथुरा में, ब्रज में, कुरुक्षेत्र में, ये स्वर्ग में, पाताल लोक में, बलि महाराज के यहाँ, या यहाँ तक कि समस्त जीवों के हृदय में सब जगह हैं, लेकिन एक ही कृष्ण एकम अर्कम इव, जैसे सूर्य एक है लेकिन अनेक जगहों पर दिखाई देते हैं। घनश्याम जी ने कल कहा था ना, वही बात यहाँ है। कृष्ण एक है लेकिन सर्वत्र है। जैसे एक सूर्य स्फटिक मणि के दीवाल में दिखता है, दर्पण में दिखता है, जल में दिखता है, तो कई व्यक्ति कहते हैं अगर वृक्ष के ऊपर दिखाई दे रहा है तो दिखाने वाला कहेगा सूर्य वृक्ष के ऊपर है, वो तो बहुत ज्यादा ऊंचा है, लेकिन कहता है सूर्य वृक्ष के ऊपर है। और सूर्य दर्पण में दिखाई दे रहा है, सूर्य जल में दिखाई दे रहा है, और लाखों घड़ा आप रख दीजिए एक जगह या करोड़ों अरबों, तो प्रत्येक घड़ा में वो सूर्य दिखाई देगा, प्रत्येक घड़ा में, प्रत्येक जल भरे हुए घड़े में। तो क्या सूर्य भिन्न भिन्न है? नहीं, एक ही सूर्य है, सब जगह दिखाई पड़ रहा है। एक ही कृष्ण सबके हृदय में है, सर्वत्र है, कारणोदक साई वही है, गर्भोदक साई वही है, क्षीरोदक साई वही है, सभी अवतारों के रूप में है। लेकिन जैसे प्रतिदृशम इव नैकर्धार्कमेकम, हर एक आंख से, भिन्न भिन्न आंखों से देखने पर सूर्य अनेक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन है एक। इसी तरह से विधूत विधूत भेद मोह, मेरा भेद मोह चला गया है, मैं अब समझने लगा हूं पूरा पूरा कि एक ही कृष्ण सबके हृदय में है, सब जगह है, सर्वत्र व्याप्त। ऐसे श्री कृष्ण में हमारी प्रीति हुई। ये कहते हुए तो सुत गोस्वामी जी अब कहते हैं, कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी आत्मन्यात्मान आवेश सुनतः श्वास उपारम। भगवती कृष्णे, भगवान कृष्ण में जो भीष्म पितामह के पास ही बैठे थे, उनमें भीष्म पितामह के मन की वृत्ति, वाणी की वृत्ति और नेत्र की वृत्ति सब लगे हुए थे। आंख से उनको ही देख रहे थे, आंखें देखने में आसक्त थी और मन चिंतन में आसक्त था, तथा वाणी बोलने में आसक्त थी, मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी। ऐसे भगवान का भजन होता है। दृष्टि भगवान में लगानी चाहिए। कुछ ऐसे आलसी होते हैं जो भगवान का दर्शन करने मंदिर में नहीं जाते, कहते भगवान तो सब जगह है, बस ध्यान करो, और ध्यान में बैठे हुए झपकी लेते रहते हैं, ध्यान कर रहे हैं। इस झपकी से अच्छा है भगवान को देखना खोल करके, उनका मुकुट कैसा है, उनका पीताम्बर कैसा है, उनका नूपुर कैसा है, इतने सुंदर है। मंदिरों में दर्शन करने वाले भक्त जन भगवान के मूर्ति को जब देखते हैं तो उनको प्रतिदिन नया नया अनुभव होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान आज हंस रहे हैं। किसी किसी दिन देखा गया है कि अगर उस परिवार में, उस समाज में कोई अप्रिय घटना हो गई है तो मूर्ति अप्रसन्न रहते हैं, शोक में डूबे रहते हैं। देखा गया है, ये कोई कल्पित चीज नहीं है कि मन के भाव को आरोपित करके देखा जाता है। नहीं, भगवान वास्तव में अगर घर में कोई खुशी का दिन है तो लगता है कि ठाकुर जी हंस रहे हैं, हंस रहे हैं। या घर में कुछ गमी हो गई है तो चिंतित है, ऐसा देखा जाता है। और कोई हास्य की बात हो रही है तो लगता है दीदी हंस रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं। वो कोई मूर्ति नहीं है, भगवान है वास्तव में। हमारी अर्चना को स्वीकार करने के लिए वे उस रूप को धारण किए हैं, तो उसको अर्चावतार कहा गया है शास्त्रों में। वे इस तरह से कल्याण करते हैं। यहाँ स्पष्ट लिखा गया है, सूत जी कहते हैं मनोवाग दृष्टि वृत्ति। वाणी से तो भगवान का कीर्तन होना ही चाहिए, वाणी वाक। यह नहीं माना जाए बस मन में स्मरण करो कुछ, तो यहां तक कहते हैं सांस से जप होता रहता है, बस होता रहता है, अजपा जप होता रहता है, बिना जप किए जप। भक्त लोग तो जप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। ये वाग वृत्ति हुई, इसमें लिखा वाग वृत्ति। भीष्म पितामह कृष्ण के बारे में बोल रहे थे, जैसे ललित गति विलास बल गुहास, ये बोल रहे हैं कृष्ण के विषय में और कृष्ण को देख रहे हैं और मन में चिंतन तो कर ही रहे हैं, तो मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी। लेकिन आजकल के सिद्ध लोग कहते नहीं, बस मन में स्मरण करते, मन में सिमरन करते रहो और आंख से टीवी देखते रहो। सिमरन करेगा, टीवी देख रहा हो क्या स्मरण करेगा? कोई भी कंडम चीज देखो और कोई भी चीज बोलो, कोई भी चीज पढ़ो और कृष्ण का स्मरण हो जाए, कैसे होगा? यह है मनोवृत्ति, वाग वृत्ति और दृष्टि वृत्ति। भीष्म पितामह कृष्ण पर अपलक आसक्ति से देख रहे थे उनके मुख पर और उनके बारे में बोल रहे थे और मन से उनकी लीलाओं का या उनके रूप का चिंतन हो ही रहा था। इस तरह से आत्मा आत्मनि आत्मानमावेश, आत्मनि पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में अपने को आवेश, अपने को युक्त करके अंत श्वास उम्बारमत, उनकी सारी वृत्तियां ठप थी केवल कृष्ण में लगी थी, यहां तक कि सांस भी अंत श्वास बाहर नहीं आ रही थी सांस अंत श्वास, श्वास अंदर ही था। उपारमत शरीर छोड़ दिए। अब इस पर सूत जी कहते हैं वहां बैठे हुए ऋषि मुनि और राजर्षि गण जो संसार में सबसे श्रेष्ठ कोटि के मनुष्य हैं, देवता हैं, ये लोग जब देखे कि भीष्म पितामह भगवान की लीला में चले गए, उसको ऐसे कह रहे सूत जी, संपद्यमानम आज्ञाय भीष्मम ब्रह्मणि निष्कले, निरुपाधि मायातीत ब्रह्म में श्री कृष्ण में भीष्म पितामह को संपद्यमानम देखे, ये जान गए कि भीष्म पितामह भगवान की संगति में चले गए, भीष्म चले गए, शरीर बाण सज्जा पर है, शरीर नहीं, भीष्म नामक जो जीव है भगवान का पार्षद बनकर भगवान के पास चला गया। संपद्यमान, बहुत सावधानी से श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, लिखा गया है संपद्यमान, इसका अर्थ है संगति प्राप्त किए। ये नहीं कि भगवान कृष्ण में जाकर के मैं विलीन हो गए, ये नहीं कि लिखा गया। संपादन का क्या अर्थ होता है? संपादन का अर्थ होता है कुछ बिखरी हुई चीजों को एक जगह सजा देना, या जो जिस स्थान पर रहे उसको वहां रख देना, जो जैसा है उसको ऐसा रखना, इसको संपादन कहते हैं। तो यहाँ संपादन शब्द है, संपद्य मान, इसका अर्थ कि भीष्म पितामह जो भगवान के पार्षद हैं वो भगवान की लीला में चले गए, यह नहीं कि भगवान में भीतर समा गए, ऐसा नहीं होता है। आज तो कोई किसी में समाया है, कुछ लोग तो कहते हैं कि हाँ जीव भगवान में मिल जाता है, बूंद है वो समुद्र में समा गया, ज्योति में ज्योति विलीन हो, ऐसे ऐसे कहते हैं, नदी है नदी जाकर समुद्र में विलीन, जीव नदी है क्या, विलीन हो जाए। कोई आज तक विलीन हुआ है संसार में, आप इतिहास पढ़े हैं वर्तमान में भी, और वो मनुष्य है, मान लीजिए कोई पिता है तो कोई बेटा कभी कहा कि पिताजी मैं आपसे अलग रह करके बड़ा दुखी हूं, मैं चाहता हूं आप में ढूक जाए, आप और हम एक हो जाए, बाप से अगर ऐसा कहे तो सोचिएगा ये पागल हो गया, तू ऐसा मत करो, तुम मेरे पास रहो, मेरी सेवा करो, मुझसे प्रेम करो, है ना। कोई बाप चाहेगा कि बेटा हम में ढूक जाए, प्रवेश कर जाए, कोई पति चाहेगा कि पत्नी हमारे भीतर विलीन हो जाए, उसकी सत्ता ही न रहे, कोई मित्र ऐसा चाहेगा, ऐसा कोई चाहे भी तो हो नहीं सकता है, चाह होना तो जीव के हाथ में, चाहेगा कि हम भगवान में समा जाए, लेकिन नहीं नहीं समा सकता, भगवान के साथ हो सकता है, उनका सखा बन सकता है, यहां तक कि उनसे बड़ा बन जाएगा, उनका बाप बन सकता है, लेकिन भगवान नहीं बन सकता, इतना सिद्धांत है।